ओम शांति। सभी तीन बार बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमने एक बहुत सुंदर गीत सुना कि बदलेंगे विश्व को। तो आपको लगता है कि अभी ये विश्व परिवर्तन के मोड़ पर है? किस किस को लगता है? बहुत अच्छा। और आपको लगता है कि आप भी इस मोड़ में हैं, परिवर्तन के मोड़ में? सबको लग रहा है। अच्छा, तो सब आज का दिन मैं समझती हूँ कि बहुत नया उमंग, बहुत खुशी अपने अंदर, बहुत उत्साह, बहुत एनर्जी आप सबके अंदर है ना? सबके अंदर है ना? तो जितनी एनर्जी, जितना उमंग, उत्साह पहले दिन जब आप यहाँ आए थे और आज जो उत्साह है, आपको लगता है इसमें कुछ चेंजेस हैं? लगता है, लग रहा है कि तो चेंजेस आपका किस दिशा में है? वो बढ़ गया है आपका उमंग इतने दिनों में? आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा, आपको लगता है कि बढ़ गया है? बढ़ गया है। अच्छा, तो अभी जैसे कल आपका प्रश्न उत्तर का सत्र था, आपने प्रश्न पूछे थे और हमारे जो यहाँ सीनियर ब्रदर सिस्टर्स थे उन्होंने जवाब दिए। तो अभी मैं थोड़े से प्रश्न पूछती हूँ आपको। तैयार हैं जवाब देने के लिए? अच्छा, तो पहला प्रश्न है कि आप सब यहाँ बदलना चाहते हैं और बदलने के उमंग से यहाँ से जाएंगे, तो कितना आप बदलना चाहते हैं? 5%, 10%, 50%, 100%? कौन कौन 100% बदलना चाहते हैं? 100%, वेरी गुड। अपने आप के लिए ताली बजाओ। ये बहुत ही अच्छा है कि आपको इतना उमंग है। अब अगर आप 100% बदलना चाहते हैं तो अपने मन में वो पिक्चर क्रिएट करिए कि जब आप 100% बदल जाएंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे। तो अपने मन में एक पिक्चर क्रिएट करिए कि आप कैसे दिखाई देंगे। तो जब आप पूरी तरह से बदल जाएंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे। तो जब आप पूरी तरह से बदल जाएंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे। बिल्कुल तनाव से मुक्त, बिल्कुल डर से मुक्त, चिंता से मुक्त, नेगेटिविटी से मुक्त। तो बिल्कुल आप फियरलेस, निर्भय, बिल्कुल निश्चिंत, बिल्कुल पॉजिटिव, पावरफुल, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, उमंग, उत्साह, ऊर्जा, कुछ करने की चाहत। तो इस प्रकार का चित्र अपना किस किस ने देखा कि कोई डर नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। वेरी गुड। और बाकी सब आपने क्या चित्र देखा? जिन्होंने अपने आप 100% परिवर्तन का चित्र देखा उनके लिए मुबारक है। लेकिन अगर नहीं देख सके, कौन नहीं देख सका, इतना क्लियर नहीं देख सके, तो किसने आपको रोका है? आपको किसने रोका है? नहीं देखने का कारण क्या है? Why can't you see your change? कोई रोक सकता है आपके मन को? कोई रोक सकता है? देखिए, फिजिकली हमें कोई रोक सकता है कई बातों में, है ना, कि यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। परंतु मन से कोई रोक सकता है हमें? आप कुछ भी सोच सकते हैं ना? आप सोच सकते हैं कि नहीं कि मन में कोई आता है रोकने के लिए? आता है कोई? एक बार जू में जो वहां पर प्राणी थे, तो जू अथॉरिटीज ने सोचा कि अभी इस जू को हमें सफारी में कन्वर्ट करना है। तो जो सफारी होता है, सफारी जू होता है, तो वहां पर कोई कैद जैसे, कोई लोहे के सलाखे ऐसे नहीं होते हैं, तो खुले में जानवर घूम सकते हैं। तो एक भालू था जो बहुत सालों से कैद था। तो समझो वो 20x20 फुट के जेल के अंदर, या जो पिंजरा है, केज है, उसके अंदर वो कैद था। और अब जब जू अथॉरिटीज ने सोचा कि इसको मुक्त करना चाहिए, इसको सफारी में रखना है, तो उन्होंने वो सारे लोहे के सलाखों को हटा दिए। और हटा दिया तो अब वो भालू आजाद हो गया। तो उन्होंने क्या देखा होगा? उन्होंने लोहे के सलाखों को हटा दिया तो क्या होना चाहिए? आइडियली क्या होना चाहिए? कि अभी वो भालू आराम से खुले में घूमना चाहिए, क्योंकि अभी वो आजाद हो गया। लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि अभी भी वो भालू 20x20 के अंदर ही घूम रहा था, जबकि वो आजाद हो गया था, फिर भी वो 20x20 फिट के अंदर ही घूम रहा था। तो हम सभी का भी यही हाल हो रहा है कि हम सब वैसे आजाद है, मन से हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन बाहर से परिस्थितियां बदल गई है, बदलती जा रही है, परंतु कहीं हम भी 20x20 के अंदर ही तो नहीं घूम रहे? जैसे वो भालू का बाहर का पिंजरा तो हट गया, परंतु उसका जो मन का पिंजरा था, अब वो उसमें कैद था। तो बाहर से वो आजाद हो गया था, लेकिन मन से अभी भी कैद में था। तो अगर हमें सचमुच बदलना है तो ये मन के कैद से हमको आजाद होना है। तो मन से हमें कोई रोक नहीं सकता, हम बहुत अच्छा बहुत ऊंचा सोच सकते हैं, है ना? कितना भी ऊंच सोच सकते हैं, कितना भी अच्छा सोच सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। एक ग्रुप ऑफ पियानो बजाने वालों को कुछ ब्रेन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि दो ग्रुप्स बनाए और उनको अलग अलग टाइम पर बुला रहे थे। तो एक ग्रुप को, दोनों ग्रुप का पहले उन्होंने ब्रेन वेव्स को चेक किया और उसके बाद उन्होंने दोनों ग्रुप को अलग अलग समय पर बुलाया। पहले ग्रुप को बुलाया और उनको कई दिनों तक पियानो कैसे बजाना है उसकी ट्रेनिंग दी, कैसे आपको पियानो बजाना है। तो वो लोग रोज पियानो बजाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दूसरा ग्रुप जिनको बुला रहे थे तो उनको कहा कि आपको पियानो मन से बजाना है। तो वही जो शिक्षा पहले ग्रुप को पियानो के साथ दिया तो दूसरे ग्रुप को मन से विजुलाइज करने के लिए कहा कि आपको मन से पियानो बजाना है। तो वो लोग मन से ऐसे विजुलाइज कर रहे थे, ऐसे फील कर रहे थे कि हम पियानो बजा रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग उनको प्रैक्टिकल में पियानो के साथ दे रहे थे फर्स्ट ग्रुप को, तो सेकंड ग्रुप को मन से वही ट्रेनिंग दे रहे थे। और दोनों का जब कोर्स पूरा हो गया, दोनों के ब्रेन वेव्स चेक किए गए तो पता चला कि दोनों के अंदर सेम चेंजेस आ गए थे। दोनों ग्रुप्स के ब्रेन वेव्स सेम ऑल्टर्ड दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसे पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में कुछ हो रहा है परिवर्तन, या आप मन से परिवर्तन कर रहे हो। तो वो अंतर उसे पता नहीं चलता है और इसीलिए अगर हम मन से विजुलाइज कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा बन गए हैं, हम बहुत ऊंचा बन गए हैं, तो आपका ब्रेन, आपका शरीर उस अनुसार बदलता जाएगा। उस अनुसार आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व चेंज होता जाएगा। तो इसीलिए परिवर्तन सबसे पहले कहां से शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, जोर से बोलिए, कहां से शुरू करना है? अपने आप से। और अपने आप में भी कहां से शुरू करना है? अपने मन से। जैसे एक बहुत सुंदर बगीचा था और उसका जो माली था वो बगीचे को मेंटेन करता था रोज। एक दिन उसने देखा कि बगीचे में बहुत फालतू झाड़ उग गए हैं, बहुत सारे वीड्स उग गए हैं। तो उसने एक ग्रास कटर लिया और उसने सारे चॉप कर दिए, सारे घास को काट दिए। तो बहुत सुंदर लगने लगा बगीचा। फिर कुछ दिनों के बाद देखा तो फिर से घास आ गए। तो फिर से उसने ग्रास कटर मशीन लिया, फिर से सारे चॉप कर दिए, सारे काट दिए। फिर से सुंदर लगने लगा बगीचा। और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से उसने देखा कि फिर से घास उग गए हैं। तो अब उसने खास जर्मनी से मशीन इंपोर्ट किया और वो ग्रास कटर मशीन जो लेटेस्ट और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का था, उसे बहुत सहज, बहुत जल्दी उसने सारे घास काट दिए। तो फिर से वो बगीचा सुंदर हो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद क्या देखा होगा, फिर से घास उग गए। तो भले उसने बाहर से बहुत प्रयास किए लेकिन उसका प्रयास जो है रिजल्ट दे रहा था, लेकिन टेम्पररी रिजल्ट दे रहा था। तो अगर उसे परमानेंट वो जगह को साफ करना था तो उसे क्या करना होता, उसको जड़ से वो सारे फालतू झाड़ निकालना होता। तो ऐसे ही हम लोग भी बहुत बार जो परिवर्तन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, हम बाहर से करते हैं। हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते कल से मैं बहुत शांति से व्यवहार करूंगी, नम्रता से व्यवहार करूंगी, कल से मैं बहुत डिसिप्लिन से रहूंगी, या हम सोचते हैं कल से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होगा सबके प्रति। तो ये हम चेंजेस कई बार ला चुके हैं और अभी भी हम कई बार वही प्रयास में हम लगे रहते हैं और फिर हम देखते हैं थोड़े दिन के बाद फिर से जैसे हमारी पुरानी आदतें थी गुस्सा करने की, डिसिप्लिन में न रहने की, जो पुरानी आदतें थी वो फिर से आ जाती है। ऐसे होता है ना, होता है ना ऐसे। तो अगर अभी हमें परमानेंट चेंज लाना है, हम पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, तो हमें कहां से काम करना पड़ेगा? तो अपने अंदर से, और अपने अंदर में भी कहां से? तो अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी मान्यताओं में, अपनी स्मृतियों में, अपनी वृत्ति में, जो किसी को दिखाई नहीं देता है, है ना? आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आपके क्या बिलीफ्स हैं, वो आप ही जानो, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो यदि आपको परमानेंट चेंज लाना है, किस किस को लाना है परमानेंट चेंज, हमें पूरी तरह से और अंदर से बदलना है। वेरी गुड। तो अगर हमें पूरी तरह से बदलना है तो हमें अंदर से अपने आप का शुद्धिकरण, हमें अंदर से हमारा जो पुराना सोचने का तरीका, पुरानी मान्यताएं, हमारे जो पुराने, जो भी हमारे पुराने अनुभव जो भी थे, वो सब को स्वाहा करना है। तो रेडी है सब? रेडी? वेरी नाइस। सो दिस इज न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू विजडम फॉर अ न्यू यू, फॉर अ न्यू वर्ल्ड। अगर हम नई दुनिया देखना चाहते हैं, हम अपने आप को नया देखना चाहते हैं, तो हमारा पुराना सब स्वाहा करना पड़ेगा। तो आज का दिन जाने से पहले अपना पुराना सब स्वाहा करके जाइए। और यहां से सब कुछ नया लेके जाइए। देखिए, कहते हैं इफ यू थिंक व्हाट यू हैव ऑलवेज थॉट देन यू विल डू व्हाट यू हैव ऑलवेज बीन डूइंग देन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। सो इफ यू वांट टू गेट समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग डिफरेंट, थिंक समथिंग डिफरेंट। तो यदि आप अपने जीवन में नया रिजल्ट चाहते हैं, नई मंजिलों पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कुछ नया करना होगा, नई दिशाएं अपनानी है, नई सोच अपनानी है। अगर आपको आबू रोड स्टेशन जाना है यहां से, तो आप समझो इस दिशा में जाते हैं। आबू रोड स्टेशन यहां पर है, समझो राइट साइड में है मेरे, और आप लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं, तो आप पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। आप चलते जाएंगे, परंतु आप पहुंच नहीं सकेंगे क्योंकि आपकी दिशा रॉन्ग है। तो ऐसे ही आपको पहुंचना है सुख, शांति, पवित्रता, स्ट्रेस फ्री, फियरलेस पर्सनालिटी की तरफ, है ना? ऐसी दुनिया जहां पर बहुत प्यार है, शांति है, सब खुशियां है, ऐसी दुनिया में आपको पहुंचना है। तो आपकी दिशा, आपकी सोचने की दिशा, आपके व्यवहार, सब कुछ किस दिशा में होनी चाहिए? उसी दिशा के प्रति होनी चाहिए, है ना? तो परिवर्तन में हमें दिशा भी पता होना चाहिए, किस दिशा में हमें मूव करना है। दूसरी बात है, हमें पता होना चाहिए कि टाइम क्या कह रहा है। समझो आप सभी, अभी अहमदाबाद तक आपकी जर्नी है, या जो भी आप प्लेन से अपने अपने डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, और अहमदाबाद है, उदयपुर है, या और कोई एयरपोर्ट में आप बैठे हैं, और आपको अभी फ्लाइट है एक घंटे में, तो आपको भूख लगी है, तो आप एक बिस्किट पैकेट लेते हैं और सोचते हैं थोड़ी देर में हम खाएंगे, तो आप उसको रखते हैं अपने बैग में, और थोड़ी देर के बाद अनाउंसमेंट होता है कि आपका फ्लाइट लेट है, एक घंटा और लेट है, तो आप सोचते हैं कि चलो मैं थोड़ा बिस्किट्स खाने लगूं, तो आप अपना बैग खोलते हैं, बिस्किट का पैकेट निकालते हैं और उसमें से एक बिस्किट आप खाने लगते हैं। इतने में आपके बगल में एक अनजान व्यक्ति है जिनको आपने पहले कभी देखा नहीं है, और वो व्यक्ति बिना आपसे पूछे आपका बिस्किट उठा के खाने लगते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपना बिस्किट खा रहे हो और वो व्यक्ति बिना आपसे परमिशन लिए आपके बिस्किट पैकेट में से बिस्किट उठा के खा रहे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? आपको क्या विचार आएंगे मन में? आपको विचार आएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, कोई मैनर्स नहीं है, बिना पूछे उठा रहे हैं, खा रहे हैं। चलो फिर भी आपने यहाँ से ज्ञान लिया है, तो हो सकता है आपके मन में शुभ भावनाएं हैं, तो आप जाने देंगे, माफ करेंगे, लेट गो करेंगे, तो आप कुछ सोचेंगे नहीं ज्यादा और आप बिस्किट खाने लगेंगे। अब आप बिस्किट दूसरा उठा रहे, वो व्यक्ति भी दूसरा बिस्किट उठा के खाने लगते हैं, आप खाते जा रहे, वो भी खाता जा रहा है, और लास्ट में एक बिस्किट बचता है, वो व्यक्ति वो बिस्किट उठा के उसको आधा करके आधा आपको देते हैं और आधा वो खुद खा लेते हैं और बिना थैंक यू बोले चल पड़ते हैं, आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत गुड फीलिंग्स में होंगे, होंगे? सच बताइए कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? आपके मन में आएगा कि कैसा अजीब व्यक्ति है ये, कि कुछ मैनर्स ही नहीं, लास्ट में थैंक यू भी नहीं बोला, पूरा बिस्किट खा के भी थैंक यू भी नहीं बोला। तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव फीलिंग्स आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा उस व्यक्ति के लिए, है ना? तो इतनी देर में आप सोचते हैं कि चलो अभी हम दूसरा पैकेट खरीदता हूँ या खरीदती हूँ और थोड़ी देर के बाद खाऊंगी, तो इसीलिए ये सोचते हुए आप एक बिस्किट पैकेट खरीदते हो और अपने बैग में डाल देते हो, और जैसे ही आप अपने बैग में डाल देते हो तो आपको पता चलता है कि आपका बिस्किट का पैकेट उस बैग में पहले से ही पड़ा है, आपने गलती से उसका पैकेट लिया था, उसके बैग में से लिया था पैकेट। ताली क्यों बजाएं? ताली क्यों बजाएं? हाँ, उस व्यक्ति के लिए ताली बजाएं। अच्छा, तो उस व्यक्ति की महानता के लिए ताली बजाएं। तो देखिए, जैसे ही आपको पता चल जाता है कि वो पैकेट आपका था, आपका नहीं था, उसका था, तो तुरंत आपके मन में उस व्यक्ति के लिए कैसी फीलिंग्स होंगी? कैसी फीलिंग्स होंगी? बहुत अच्छी फीलिंग्स आएंगी, आपको बहुत अच्छे विचार आएंगे, आपको विचार आएगा कितना अच्छा व्यक्ति था कि उसने अपना पूरा पैकेट मुझे दिया और कुछ बोला भी नहीं, खाने दिया और लास्ट वाला बिस्किट भी आधा दिया, तो कितना अच्छा व्यक्ति था। तो देखिए, एक सेकंड में आपके मन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, पहले आपके मन में उसके लिए इतने नेगेटिव विचार थे और अभी आपके मन में उसके लिए कितना पॉजिटिव विचार, कितनी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके मन में आ गए। तो परिवर्तन कितनी देर में हुआ, कितनी देर में परिवर्तन हुआ? एक सेकंड में आप बिल्कुल नेगेटिव, गुस्सा आ रहा था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था उसके लिए, और अभी आपके अंदर इतना चेंज आ गया, आप टोटली पॉजिटिव, और बहुत आपको उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट, उस व्यक्ति के लिए प्यार, ये आपके अंदर पैदा हो गया। तो इतना चेंज, बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है कि नहीं? टोटल नेगेटिव टू टोटल पॉजिटिव, और कितनी देर में हुआ, कितनी देर में? एक सेकंड। तो बदलने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? आपने कहा ना 100% बदलना है, तो कितने दिन में बदलेंगे, कितने दिन में? परिवर्तन के लिए इट इज नॉट अ मैटर ऑफ टाइम बट इट इज अ मैटर ऑफ विजडम। समय की बात नहीं है, समझ की बात है। परिवर्तन यदि हमें करना है तो हमें अच्छी समझ चाहिए। जो आपको इतने दिन में मिल रहा था, जब हमें वो विजडम मिलता है तो हम बदलने में देरी नहीं लगती है, फिर चुटकी में बदल जाते हैं, चुटकी में। तो अभी आपको इतने दिनों में जो समझ मिली, आपको अपने आप के बारे में समझ मिली, आपको परमात्मा के बारे में समझ मिली, कल आपको कर्म के बारे में समझ मिली, है ना? आपको क्या लगता है, समय की भी समझ होना जरूरी है? आई शुड नो व्हाट टाइम इट इज। समय साथ साथ, उसके साथ साथ चलना चाहिए, इसलिए तो हम घड़ी पहनते हैं, इसलिए घड़ी सब जगह लगाते हैं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो हम अपने प्लान्स बनाते हैं, हम अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, लेकिन साथ में हमें पता चलना चाहिए कि टाइम भी हमें कुछ कह रहा है। पता होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है कि समय के हिसाब से चलना जरूरी है कि नहीं? जैसे आप अपने घर में अपने समय पर उठते होंगे, है ना, 7 बजे उठते होंगे, 8 बजे उठते होंगे, 6 बजे, 9 बजे, लेकिन यहाँ पर आपको समय के लिए टाइम टेबल दिया गया, आपको बताया गया 4 बजे आपको यहाँ पर आना है, 6:30 बजे आपको एक्सरसाइज के लिए आना है, 7 बजे आपका सेशन है। तो जिसने समय के हिसाब से चले तो उनको क्या लगता है, फायदा हुआ कि नहीं? जिसको लगता है कि हमने यहाँ के टाइम टेबल पर चल के फायदा लिया है तो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। अगर आप यहाँ पर आकर अपने हिसाब से चलते थे तो फायदा होता था? आप अपने टाइम पे उठते, अपने टाइम पे खाते तो फायदा नहीं होता था? आप यहाँ के टाइम के हिसाब से चले तो फायदा ले सके। तो टाइम के हिसाब से चलना जरूरी है फायदा लेने के लिए, स्थान का फायदा लेने के लिए और टाइम का फायदा लेने के लिए। समझो आपका प्लेन है, ट्रेन है 10:30 बजे का सुबह, और आप अपने हिसाब से चलते हैं और आप पहुंच जाते हैं 10:35 को, या आप पहुंच जाते हैं 11:15 को, तो क्या होगा? आपकी ट्रेन चली जाएगी, आपका प्लेन छूट जाएगा। तो टाइम के हिसाब से चलना जरूरी है। जैसे किसान है तो किसान खेती में बीज बोता है तो टाइम देखकर बोता है। अगर वो बहुत गर्मी में, बहुत धूप है और उस समय वो बीज बोए तो उसके बीज को फलीभूत होना इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है कि डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है ना, मुश्किल है ना। और अगर वो बारिश से पहले, बस बारिश का मौसम है और उस समय उसने बीज बोया तो इजी है, वो जल्दी ही अंकुरित होगा, वो बीज जल्दी ही वो पौधा में बदल जाएगा। तो समय को सुनना, समय के हिसाब से चलना ये अक्लमंद का काम है। जब छोटे हैं और टीनेज में है, उस समय यदि हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं, उस समय हम समय का सदुपयोग करते हैं, तो हम कई बार कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को कहते हैं कि देखिए आपको 5 साल 10 साल मेहनत करनी है और फिर बाद में जीवन के 50 साल आपको आराम करना है, जो आपने मेहनत किया है उसका फल खाना है। या तो शुरुआत के 10 साल आप आराम करो, मौज करो, और बाद में 50 साल मेहनत करो। तो कौन सी बात समझदारी की है कि जब समय हमें साथ दे रहा है, जब टीनेज में है, यंग एज में, हमें शरीर भी साथ देता है, हमें लोग भी साथ देते हैं, सब साथ मिलता है, सपोर्ट सिस्टम्स बहुत होते हैं, और उस समय यदि हम करते हैं तो फिर हमें इजी लगता है। और बाद में एक एज के बाद फिर अगर हम पढ़ना चाहें भी तो हम कहते भी है कि अभी हमें इतना याद नहीं रहता है, और उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, हमें सपोर्ट सिस्टम्स इतने नहीं मिलेंगे। तो समय के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। तो अभी हम समय के अच्छी तरह समझेंगे, समय और उसकी दिशा, किस दिशा में समय फिर रहा है। तो आप मुझे बताइए कि समय आपको क्या लगता है, स्ट्रेट लाइन में है समय? स्ट्रेट लाइन में, सीधी सीधी दिशा में समय चल रहा है कि चक्र के रूप में चल रहा है? टाइम इज लीनियर और टाइम इज सर्कुलर, क्या कहेंगे? देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, उसके बाद फिर से संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना? दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर के बाद फिर से जनवरी। तो आप अगर ध्यान देंगे तो समय चक्र में घूमता है, और इसीलिए हम कहते हैं काल चक्र। काल चक्र माने समय सर्कुलर है, चक्र के रूप में घूम रहा है। तो हमें अभी पता होना चाहिए, जैसे अभी हमें पता है कि 7:30 है, हमें पता है कि आज का दिन कौन सा है, पता है, तो इस हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है हमें पता है। तो इस हिसाब से जो बेहद का समय है वो कौन सा चल रहा है, कौन सी दिशा में घूम रहा है, वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर आप देखेंगे इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, चेंजेस, तो चेंजेस की भी दिशा साइक्लिक है, है ना? परिवर्तन की दिशा चक्र के रूप में है, सब चीज चक्र के रूप में बदल रहे। अगर आप नेचर को देखेंगे तो नेचर में एक तो सूरज और चांद का आना साइक्लिक है ना, सूरज का उगना, सूरज का अस्त होना साइक्लिक है। अगर मनुष्य जीवन को देखो तो मनुष्य जीवन में भी जन्म होना, फिर मृत्यु, फिर जन्म, मृत्यु, और एक जीवन में भी देखो तो बाल्यकाल है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, और फिर बाल्यकाल। तो मनुष्य जीवन भी चक्र में घूम रहा है। अगर आप अपने कोई भी यात्रा के साधन को भी देखो, जो भी हम वाहन यूज करते हैं, तो वाहन घूम रहे होते हैं तो चक्र के आधार से। एरोप्लेन में भी व्हील्स है, साइकिल में भी व्हील्स है, सब कार्स में भी व्हील्स है, ट्रक में भी व्हील्स है। अच्छा, आप जब चलते हो तो आपका चलने का जो स्टाइल है, आपके कदमों के जो मूवमेंट है वो भी कैसा है? आपके पैर ऊपर उठते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर उठते हैं, नीचे जाते हैं, तो हाउ इज इट मूविंग? कैसे मूव हो रहा है? साइकिल में, चक्र में। और अगर चक्र की दिशा देखेंगे तो चक्र की दिशा कैसी है? आपका मूवमेंट, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपका जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है ना, दिशा क्लॉकवाइज है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप पीछे जाएंगे। लेकिन हमारा नॉर्मल मूवमेंट कैसा है? नॉर्मल मूवमेंट हमारा साइक्लिक है, हमारे कदम साइकिल के रूप में चलते रहते हैं। तो अगर हमें समय को समझना है तो इस समय को समझने के लिए हमारे शास्त्रों में, इंडिया में, विदेश में, सब जगह एक बहुत अच्छा सिंबल है। जानते हैं कौन सा सिंबल है जो समय की पहचान देता है? जानते हैं कौन सा सिंबल है? वो है स्वस्तिक। आपने अक्सर करके इस चिन्ह का उपयोग किया होगा, अब करते आ रहे हैं। जब भी कोई शुभ कार्य करना है, जब भी कोई कार्य का श्री गणेश करना है, यानी शुभ शुरुआत करना है, तो हम स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और स्वास्तिक चिन्ह अकाउंट्स में भी यूज करते हैं, हिसाब के चोपड़े में भी यूज करते हैं, हम घर के द्वार पे भी उसको लगाते हैं वो चिन्ह। और ये चिन्ह केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी इसका उपयोग होता है। इजिप्ट में जो पिरामिड्स है उस पे भी ये चिन्ह होता है, और ग्रीस में जो अर्थी को ले जाने वाली गाड़ी होती है उस पे भी ये चिन्ह होता है। ये चिन्ह कई सिक्कों पर भी, पुराने पुराने सिक्कों पर भी मिलते हैं। और जर्मनी में कहते हिटलर ने भी ये चिन्ह का उपयोग किया था, परंतु उन्होंने उल्टा उपयोग किया था, उल्टी दिशा में, इसलिए कहते हैं उनका पतन हुआ, ऐसे कहते हैं। कहने का भाव ये है कि ये चिन्ह विश्व प्रसिद्ध चिन्ह है। भारत में बहुत ज्यादा मंदिरों में, शुभ कार्यों में इसका उपयोग होता है, लेकिन विदेश में भी इसका उपयोग होता है। तो ये चिन्ह का मतलब क्या है, ये किसी से भी पूछो तो कोई जानते नहीं है। तो इस चिन्ह का बहुत सुंदर मतलब है, ये चिन्ह समय का सूचक है, समय की दिशा का सूचक है, किस दिशा में समय फिर रहा है, चक्र फिर रहा है। तो अगर आप देखेंगे स्वास्तिका की चार भुजाएं हैं, और कई बार अगर आप नोट करेंगे उसमें चार बिंदी भी लगाते हैं, हर भुजा के अंदर एक बिंदी भी होती है। तो स्वास्तिका सृष्टि नाटक का प्रतीक है, और इस सृष्टि नाटक में जो मेन डायरेक्शन देने वाली, व्हील को घुमाने वाली, ड्राइविंग करने वाली, वो बिंदी आत्मा है। हम सब बिंदी आत्मा ही इस सृष्टि नाटक को दिशा दे रहे हैं, इसकी दशा सेट करते हैं। स्वस्तिका संस्कृत शब्द से निकला है, स्वस्ति शब्द से, जिसका अगर संधि विच्छेद करो, स्प्लिट करो, तो निकलता है सुअस्ति। सु का मतलब है शुभ, और अस्ति का मतलब है अस्तित्व, पहचान, आइडेंटिटी। तो स्वस्तिक मतलब स्व की पहचान, स्व का अस्तित्व दर्शाने वाला सृष्टि चक्र। तो स्वास्तिक हमें बताता है कि हम सब आत्माएं बिंदी कौन से दिशा में है, कौन सी दशा में है। आपको पता है दिशा दशा इनका कनेक्शन है, जिस दिशा में हम जाते हैं उस हिसाब से हमारी दशा होती है। तो स्वास्तिक की चार भुजाएं दिशा दिखाती है, दशा दिखाती है। तो सबसे पहली भुजा अगर हम राइट साइड स्वस्तिक का लेते हैं, तो स्वस्तिक का जो राइट साइड की भुजा है वो उसकी दिशा ऐसी है, है ना? ऐसी माना ये दिशा में हम क्या करते हैं, ऐसे जब हाथ होता है उसका मतलब क्या है, जब हम हाथ ऐसा रखते हैं उसका मतलब क्या है, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। ये दिशा माना ब्लेसिंग्स, हम किसी को ब्लेस करते हैं तो ऐसे हाथ रखते हैं। तो ये दिशा बताता है कि जो सृष्टि नाटक है इसमें जब ये अवधि है, ये काल है, सबसे पहला काल है, तो उसमें सब आशीर्वाद प्राप्त किए हुए आत्माएं रहती हैं। ये जो सृष्टि चक्र है, ये जो सृष्टि नाटक है, इसमें तीन मुख्य सत्ता है जिस पे ये पूरा नाटक फिर रहा है। और वो तीन मुख्य सत्ता कौन से हैं? सबसे पहले है आत्म सत्ता, दूसरी सत्ता है परमात्म सत्ता, और तीसरी सत्ता है प्रकृति की सत्ता, मैटर, सोल, मैटर एंड गॉड। इन तीनों के ऊपर ये पूरा खेल चल रहा है, ये पूरा सृष्टि नाटक इन तीनों के ऊपर फिर रहा है। इसमें आत्मा और प्रकृति दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। आत्मा, प्रकृति, सबसे पहली प्रकृति हमारा शरीर, और उसके बाद ये पांच तत्व, नेचर जिसे हम कहते हैं। तो आत्मा जैसी स्थिति में है वैसे उसका शरीर है, वैसे बाह्य प्रकृति है। आप देखिए, आपको एक गुस्से का विचार आता है तो आपको लगता है आपके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं, एक गुस्से का विचार, और शरीर में क्या होता है? खून खौलने लगता है, गर्म हो जाते हैं, पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता है। तो एक विचार आत्मा के अंदर आ गया, मन में आ गया, उसका इफेक्ट शरीर पे आ जाता है। आपको एक डर का विचार आ गया कि पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, आपको डर का विचार आ गया तो आपके पेट में कुछ होने लगता है, आपके दिल की धड़कने बढ़ने लगती है, पसीना छूटता है। तो विचार हमारे मन में उत्पन्न हुआ लेकिन शरीर पर उसका असर होता है, होता है ना? तो आत्मा और शरीर बहुत गहरा कनेक्शन है, आत्मा और प्रकृति, ये वाली शरीर की और बाह्य प्रकृति। देखिए, कुछ रिसर्चेस भी किए हैं जिससे पता चला है कि हम जैसा सोचते हैं तो वैसे बाहर में असर होता है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर इमोटो, सुना है नाम डॉक्टर इमोटो? आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। तो उन्होंने सिंपल पानी जो हम पीते हैं उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो पानी हम पीते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो पानी है उसको अलग अलग बॉटल्स में रखा, और अलग अलग बॉटल पे उन्होंने लेबल्स लगाए। एक बॉटल पे लिखा थैंक यू, दूसरे बॉटल पे लिखा प्लीज, तीसरे बॉटल पे लिखा किल, चौथे पे लिखा हिटलर। और फिर उन्होंने क्या किया, वो पानी को फ्रीज किया, क्रिस्टलाइज किया, और फिर उसके बाद उसका कण, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, और उन्होंने क्या देखा कि जिस पानी के बॉटल पे लेबल लगाया था थैंक यू, उसका बहुत सुंदर फूल जैसा डिजाइन बन गया था। जिस पे लिखा था प्लीज, उसका भी बहुत सुंदर डिजाइन बन गया था, और जिस पे लिखा था किल, मारो, हिटलर, तो उसका जैसा तैसा खराब डिजाइन बन गया था। फिर उन्होंने और भी कई ऐसे प्रयोग किए। तो उन्होंने जापान में एक लेक है, उस लेक का जो तालाब है उसका पानी उन्होंने चेक किया क्रिस्टलाइज करके, तो उन्होंने देखा बहुत खराब डिजाइन बन गया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, सन्यासियों को वहां पर बुलाया, और उन्होंने बैठकर वहां मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद फिर वो पानी को वापस माइक्रोस्कोप में देखा तो अब वो सुंदर डिजाइन बन गया था। तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे, और फिर वो यहाँ आबू में भी आए। जब वो यहाँ आबू में आए और उन्होंने यहाँ पर भी पानी का कण उसको चेक किया तो उन्होंने देखा बहुत सुंदर डिजाइन वाला था। फिर आबू में ज्ञान सरोवर, जो कल आप घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा ना, ज्ञान सरोवर देखा सबने? तो ज्ञान सरोवर में वहां पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पर हमारी जो मुख्य प्रशासिका है दादी जानकी जी, जो आप जानते 103 साल के हैं, तो दादी जानकी के आगे ऐसे ग्लास रखा था पानी का, और मॉर्निंग मेडिटेशन अमृत वेले का समय था। दादी जी ने बैठ करके मेडिटेशन किया और फिर वो जो पानी है फिर उन्होंने उसको चेक किया तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बन गया था, बहुत ही सुंदर। पहले सुंदर था लेकिन जब दादी ने मेडिटेशन किया उसके बाद बहुत सुंदर हो गया। आप ये इमेजेस चेक कर सकते हैं, गूगल में आप चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे इमेजेस। तो सचमुच बहुत सुंदर डिजाइन बना था। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे क्या समझ में आता है कि जो फाइव एलिमेंट्स है प्रकृति, इसमें पानी एक तत्व है, पृथ्वी पानी है ना, आकाश वायु अग्नि। तो इसमें पानी बहुत सेंसिटिव है सब तत्वों में। और आपको पता है आपका शरीर इसमें कितना हिस्सा पानी है, कितना हिस्सा पानी का है, इसमें मोर देन 70%, 70% से ज्यादा पानी का हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम फील करते हैं, हमारे शरीर पे उसका असर होता जा रहा है। तो जितना हम अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं, तो हमारे शरीर पे उसका सुंदर असर हो रहा है। और जैसे हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरा असर हो रहा है। और ये जो प्रकृति है बाहर, ये विश्व है, इस विश्व में पानी कितना हिस्सा है? आप पृथ्वी को देखो, ग्लोब को देखो, इसमें पानी कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा है? 3/4 है ना, मतलब वापस 70% से ज्यादा पानी है। तो इसका मतलब हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं औरों के लिए, विश्व के लिए, तो उस विश्व पे असर हो रहा है। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो औरों के लिए फील करते हैं, उस पर असर हो रहा है। तो इस विश्व को बदलने की जिम्मेवारी, प्रकृति को बदलने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। देखिए आप सब यहाँ ज्ञान सुन रहे हो, तो आत्म परिवर्तन ज्ञान से हो सकता है, पर प्रकृति का परिवर्तन, हमें नेचर को भी बदलना है। हमने देखा नेचर भी चेंज होता है, तो नेचर को हम ज्ञान से बदल सकते हैं, उसको बैठ के शिक्षा दे सकते हैं, नेचर को नेचर को क्लास करा सकते हैं। नेचर को हमको कैसे बदलना है? अपने अंदर के नेचर से, अपने ओरिजिनल नेचर में आकर। आपने जान लिया पहले दिन ओरिजिनल नेचर हमारा क्या है, हम सब का ओरिजिनल नेचर क्या है, हम सब कौन है, हम सब आत्माएं हैं। और ओरिजिनली आत्मा कैसी है? शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा के 7 ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, ओरिजिनल गुण है। तो जब हम अपने ओरिजिनल नेचर में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर की नेचर, बाहर के 5 एलिमेंट्स भी क्या होंगे, वो भी अपने ओरिजिनल नेचर में आ जाएंगे। तो अगर हमें प्रकृति को भी बदलना है तो हमें अपने ओरिजिनल नेचर में आना होगा, तब हम ओरिजिनल नेचर को देख सकेंगे, उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो ये जो खेल है सृष्टि नाटक का, मैं स्वस्तिका की बात जो आपको बता रही थी, तो ये जो खेल है इसमें 1/4 जो स्वस्तिका की पहली भुजा है वो दिखा रहा है कि ऐसा समय इस सृष्टि में था, ऐसा समय था जब आत्मा और प्रकृति दोनों ब्यूटीफुल नेचर में थे, दोनों अपने ओरिजिनल नेचर में थे। और जब दोनों ही ओरिजिनल नेचर में थे, आप सोचो अगर आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत शुद्ध फील हो रहा है, बहुत एनर्जी फील हो रहा है, बहुत उमंग फील हो रहा है, तो बाहर की दुनिया भी समझो बहुत अच्छी है। बाहर की दुनिया में भी ठंडी हवा बह रही है, प्रकृति में भी बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पंछी दिख रहे हैं, रंग बिरंगे फूल है, पंछी बहुत अच्छे मधुर आवाज कर रहे हैं और प्रकृति अपनी सुंदर नजारा हमको दिखा रही है, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप यहाँ पर ही आए हैं तो यहाँ का नजारा देख के आपको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा फील होता है ना? तो आप सोचिए जब सतयुग, जो पहला युग है, जो सृष्टि नाटक में जो सबसे पहले स्वस्तिका का ऐसा हाथ है, ऐसी भुजा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आशीर्वाद वाला युग है। ऐसा युग है जहाँ पर आत्मा प्रकृति सबको आशीर्वाद मिला हुआ है, ब्लेस्ड सोल्स है, रिच सोल्स है, सब देने की भावना वाले हैं। जब आपके मन में बहुत शांति है, प्रेम है, तो आप गुस्सा कर सकते हैं? गुस्सा कर सकते हैं? गुस्सा कर सकते हैं? अभी देखिए, अभी मैं आपको बोलूं आप गुस्सा करो, चलो आपको मैं छुट्टी देती हूं अभी कि आप जितना गुस्सा करना है कर लो आज, फिर कल नहीं करना, आज के बाद नहीं करना है, तो चलो करो। कौन करेगा गुस्सा? कौन करेंगे? हाथ उठाओ, कौन करेंगे अभी गुस्सा? अभी इस वक्त कौन करेंगे गुस्सा? करेंगे? आप तो और ही मुस्कुरा रहे हो, मैं आपको कह रही हूँ गुस्सा करो तो आप मुस्कुरा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी एक तो कोई कारण ही नहीं है गुस्सा का, और दूसरा आपका मन अभी बहुत पीसफुल है, आपका मन बहुत प्योर है, अच्छा फील कर रहे हैं। तो जब अच्छा फील कर रहे हैं तो गुस्सा आएगा ही नहीं, है ना? गुस्सा कब आता है? जब अंदर इरिटेशन होता है। तो जब आपका मन भरा हुआ है प्योरिटी से, पीस से, हैप्पीनेस से, तो आप गुस्सा कर नहीं सकते। तो ये ऐसी दुनिया है, सतयुग जिसे कहते हैं, द गोल्डन एज, जहां पर सब बहुत शांति, प्रेम, आनंद से भरे हुए हैं, और इसीलिए प्रकृति भी बहुत सुंदर है। तो दुनिया बहुत ही सुंदर दुनिया है, द बेस्ट दुनिया, द गोल्डन एज ऑफ ह्यूमैनिटी कहेंगे, मानवता का स्वर्णिम युग, जहां पर हर मानव एक दूसरे को बहुत प्यार से, रिस्पेक्ट से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को देने की भावना है, ऐसा वो युग है, ऐसी वो दुनिया है। लेकिन उसके बाद आप देखना धीरे धीरे स्वस्तिका की दिशा, अगर आप देखेंगे उसकी भुजाएं देखेंगे तो वो राइट की तरफ है, और फिर वो भुजा नीचे की तरफ जाती है, अभी वो नीचे, पहले ऐसे था वैसे हो जाता है। तो ऐसे का मतलब क्या है? अ लिटिल डाउनफॉल, फिर भी आपके राइट की तरफ। देखिए जो भी शुभ कार्य आप करते हैं तो आपके राइट से करते हैं, है ना? ब्लेसिंग देना, पैसों की लेन देन, तो ये बताता है कि अभी भी दुनिया अच्छी है। पहले गोल्डन एज था, सतयुग था, और उसके बाद ऐसी दुनिया है, सिल्वर एज जिसको कहते हैं, जिसे त्रेता युग कहते हैं। त्रेता माना कुछ त्रुटि, कुछ कमी दुनिया में आ गई, फिर भी दुनिया बहुत अच्छी है, फिर भी डिफरेंस इतना है जितना गोल्ड और सिल्वर में है। गोल्ड और सिल्वर में क्या अंतर है? सोना और चांदी, उसमें क्या अंतर है? आप देखना, सोना वो शाइन लंबे समय तक करता है, उसका जो शाइन है, उसकी लस्टर है, वो लंबे समय तक चलता है, लेकिन चांदी थोड़ा उस पर असर होता है, है ना? थोड़ा प्रभावित होता है, एटमॉस्फेयर का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा युग जो चांदी का युग है, तो इसमें इतना डिफरेंस है जितना गोल्ड और सिल्वर में है। यहाँ पर भी दुनिया बहुत अच्छी है, यहाँ पर भी सुख, शांति, पवित्रता, स्नेह, सब कुछ आत्माओं में है, प्रकृति भी बहुत सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा जैसे चंद्रमा की कलाओं में अंतर आ जाता है, एक 16 कला संपूर्ण चांद और थोड़ी सी उसकी कलाएं कम हो जाती है, तो उसके लस्टर में थोड़ी कमी आ जाती है, उसकी चमक में थोड़ी कमी आ जाती है, तो तो ऐसे ये दुनिया और सतयुग और त्रेता युग के बीच में है। और फिर आप देखना अब स्वास्तिक की भुजा किस दिशा में जा रही है, तो आपके लेफ्ट की तरफ। और अब उसका पोज कैसा है, मांगने का पोज है। और इस समय पर यूं कहेंगे द्वापर युग आ गया। द्वापर, द्वा माना स्प्लिट हो गया, दो आ गया। सतयुग और त्रेता युग, ये दो युगों में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत, एकता है दुनिया में। देयर इज नो ड्यूअलिटी, डबल नहीं है, एक है, सब एक है, सब मिलके एक है। लेकिन जैसे ही समय बीतता है तो अब काल चक्र उस मोड़ पे आता है जहां पर दो शुरू हो जाता है। द्विधा, दो है तो ताली बजती है, एक से ताली बजती है, आवाज होता है, दो है तो ताली बजती है। तो यहां से द्वंद, यहां से दुविधा, यहां से दुख, यहां से दुराचार शुरू होने लगता है। और धीरे 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 इसको, जिसको द्वापर युग कहते हैं या कॉपर एज कहते हैं, यानी अब क्या हो गया है, सृष्टि एक उसकी दिशा चेंज हो गई, समय की दिशा चेंज हो गई। अब जो देने की भावना थी, अब लेने की भावना शुरू हो गई। यानी दुख होता है तो सब किसको याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। और कैसे याद करते हैं कि परमात्मा भगवान प्लीज मेरी झोली भर दो, प्लीज मुझे थोड़ा सुख दो, थोड़ी शांति दो। तो मांगना शुरू हो गया। वहां पर सतयुग त्रेता में देना था और अब लेना, मांगना। और धीरे धीरे समय का चक्र जैसे आगे बढ़ता है, तो अब देखिए काल चक्र स्वस्तिक में भुजा की पोज देखिए कैसा होता है, ऊपर की तरफ और ऐसे। जैसे कहते हैं ना कि कोई किसी को बहुत गुस्सा आ गया, अति में आ गए, तो कहते हैं अरे तुम्हारा हाथ उठ गया, इतना तुम्हें गुस्सा आ गया, हाथ ऊपर उठ गया। तो हाथ ऊपर उठ जाना माना अति में आना, टू मच। तो अब दुख, दुविधा, दुराचार, भ्रष्टाचार सब अति में आ जाता है, टू मच में आ जाता है, अनेकता में आ जाता है। तो उसे कहते हैं कलयुग, कलह का युग, कलह क्लेश का युग, काला युग, या यूं कहेंगे द आयरन एज ऑफ ह्यूमैनिटी, लोहे का युग आ जाता है। और इस युग में दुख, अशांति, चिंताएं, तनाव सब कुछ अति में हो जाता है, रोग, शोक सब कुछ अति में हो जाता है। और फिर आपको क्या लगता है कि ये जो सृष्टि चक्र है, हम कौन से मोड़ पे हैं अभी, हम सब आत्माएं कौन से युग में अभी हैं, क्या लगता है कौन से युग में हैं? जोर से बोलिए। तो देखिए वैसे अगर आप देखेंगे तो आज का जो समय है वो बता रहा है कि बहुत कलह का समय चल रहा है, बहुत क्लेश का समय चल रहा है। और सबसे ज्यादा जो आज उपयोग होता है तो लोहे का उपयोग होता है, आयन एज का समय चल रहा है। परंतु ये आयन एज सदैव के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये काल चक्र कैसे घूम रहा है, चक्र के रूप में। तो अब क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, जोर से बोलिए, कलयुग के बाद क्या आने वाला है, वापस सतयुग आने वाला है। कलयुग के बाद फिर से वो गोल्डन एज आने वाला है। और वो गोल्डन एज क्या ऑटोमेटिकली आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा? देखिए कितनी भी अंधेरी रात है, कितनी भी अंधेरी रात है, लेकिन सवेरा अपने समय पर आ ही जाता है। पर कैसे आता है सवेरा, कैसे आ जाता है सवेरे, सवेरा अचानक कैसे आ जाता है? कई बार आपने देखा होगा, आपको महसूस हुआ होगा कि रात बहुत लंबी है, क्योंकि हो सकता है आप कुछ बीमारी से, कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि रात लंबी है, लेकिन कितनी भी लंबी रात है, सवेरा तो अपने समय पर आने ही वाला है। और सवेरा कब आता है? जब सूर्य उदय होता है। तो सूरज के उदय होने से रात समाप्त होती है और सवेरा आ जाता है। इसी प्रकार कलयुग सतयुग में कब बदलेगा? जब ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा शिव वो धरा पर अवतरित होते हैं, और जब वो धरा पर अवतरित होते हैं तो कलयुग बदल कर सतयुग में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी वो मोड़ पर हम हैं जब कलयुग बदल कर सतयुग की ओर जाने वाला है, और इस मोड़ को संगम युग कहते हैं। संगम युग क्यों? संगम युग क्योंकि परमात्मा शिव धरा पर आ चुके हैं और आकर के कलयुग को समाप्त करके सतयुग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और हम सब आत्माएं अभी उनसे रूबरू मिल रहे हैं। तो ये संगम का समय चल रहा है, यूनियन। आप देखना जहां पर भी संगम चलता है वहां सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन होता है ना, देखो 31 दिसंबर क्या करते हैं? 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं, है ना? एक तरफ पुराना समाप्त हो गया और दूसरी तरफ नया आ रहा है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप सृष्टि चक्र को देखेंगे, सृष्टि की घड़ी को देखेंगे, तो वो टाइम बता रहा है, कांटा इशारा कर रहा है कि दिस इज द टाइम फॉर सेलिब्रेशन। ये संगम युग का समय चल रहा है, और ये संगम के समय पर हमको पुराना खत्म करना है, पुराना छोड़ना है और नए को अपनाना है, है ना? 2018 हमने 31 दिसंबर तक लिख रहे थे, है ना, अपने डायरी में, अपने चेक्स पे, अपने जो भी कारोबार है उसमें आप 2018 लिख रहे थे। कब तक? जब तक 31 दिसंबर था। और जैसे 1 जनवरी शुरू हुआ तो आपने क्या किया? 2019 आपने लिखना आरंभ किया, है ना? फिर आप 2018 वापस नहीं लिख सकते अपने चेक्स में, अपने डेली ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि वो फिर वो वैलिड नहीं होगा। तो समय के हिसाब से बदलना है। तो अब नया युग आ रहा है, पुराना युग कलयुग जा रहा है, और हम उस मोड़ पे हैं। 12 बजने वाला है और अब हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर हमें नए युग में आना है तो उसके लिए हमें नई सोच, हमें नए शब्द, नए कार्य, नए व्यवहार हमें करना है। मैंने जैसे बताया नई बिलीफ सिस्टम्स अपनानी है। तो अब हमें अंदर से पूरा चेंज अपने आप को करना है। तो पहले ओल्ड फैशन वॉज बॉडी कॉन्शियसनेस एंड न्यू फैशन इज सोल कॉन्शियसनेस। सो हु आर रेडी टू अडॉप्ट द न्यू फैशन? अब नया फैशन, लेटेस्ट फैशन है सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस माना यूनिवर्सल ब्रदरहुड कॉन्शियसनेस। हम सब आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप सितारा, और बाकी भी सब कौन है? न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न क्रिश्चियन है, सब कौन है? सोल, स्टार्स। आप बताइए स्टार का कोई धर्म है? हिंदू का अलग स्टार है, मुस्लिम का अलग स्टार है। इलेक्ट्रिसिटी का कोई धर्म है? इलेक्ट्रिसिटी हिंदुओं का अलग है, क्रिश्चियन का। पानी अलग है हिंदुओं के लिए, मुस्लिम के लिए। एयर अलग है, 5 एलिमेंट्स अलग अलग है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब धर्म वालों के लिए? नहीं, सबके लिए एक है। तो जब हम ये कॉन्शियसनेस में, ये अवेयरनेस में, ये स्मृति में आते हैं कि हम एनर्जीज हैं, हम ऊर्जा है, हम सितारा है, हम आत्मा है, तो बस फिर सारे बाउंड्रीज, जो भालू कैद में था ना, तो हम भी सब ऐसे कैद में जो थे, धर्म के कैद में, भाषा के कैद में, जाति के कैद में, विचारों के कैद में, मान्यताओं के कैद में, तो अभी आपको नहीं लगता इससे मुक्त होना है? मुक्त होना है ना, मुक्त होना है ना। और हमें अब इस ऊर्जा में स्थित होना है कि मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्योर हूँ, पीसफुल हूँ, लवफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। और मेरी पहचान क्या है? मैं परमात्मा की दिव्य संतान हूँ। तो ये आइडेंटिटी कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएंगे ये आइडेंटिटी? अब हमें इसी आइडेंटिटी में, इसी अवेयरनेस में रहना है और इसी अवेयरनेस से हमें व्यवहार करना है। तब वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक परिवार हमें भासेगा और तभी ये विश्व सत्योग गोल्डन एज बन जाएगा। तो सब रेडी हैं गोल्डन एज के लिए? गोल्डन एज के लिए मैंने कहा ना आपको दो काम करना है, एक पुराना स्वाहा, तो बोलिए स्वाहा, पुरानी सब विचार मान्यताएं, सब आपके सोचने का स्टाइल, कर्म करने का स्टाइल, वो सब स्वाहा। जोर से बोलिए। और अब सेकंड काम आपको करना है कि मैं एक शुद्ध चेतन शक्ति आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ और मुझे सबको उसी नजर से देखना है कि सब शुद्ध आत्माएं हैं, सब प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप आत्माएं हैं। तो फिर से वो सबके लिए प्यार, सबके लिए शुभ भावनाएं हमारे मन में जागृत होंगी। ठीक है, तो सब एवरीबडी इज रेडी टू वेलकम द गोल्डन एज? यस, सो रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। तो आज से आप जाएंगे, आप नया बन के जाएंगे, नया है ना, नई स्मृतियां। और नया बनने के लिए हमने जैसे कहा समझ चाहिए, अच्छी समझ, गहरी समझ। तो परमात्मा रोज यहाँ पर हमें ज्ञान देते हैं, हम सब यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सब हम सब स्टूडेंट्स हैं, हमारे शिक्षक स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। वो रोज हमें शिक्षा देते हैं ताकि हम अपने ओल्ड बिलीफ को शेयर ऑफ करें और हम अपने न्यू बिलीफ, न्यू स्टाइल ऑफ थिंकिंग हम एडॉप्ट करें। तो सब यहाँ से जाएंगे तो परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उसे हम मुरली कहते हैं, और वो मुरली ऐसी मीठी बांसुरी है, ऐसा मीठा ज्ञान है जो हमें मीठा अंदर से बना देता है। तो रेडी है, कौन कौन यहाँ से जाएंगे और मुरली सुनेंगे? वेरी गुड। तो जितना हम मुरली सुनेंगे हम अपने ओल्ड बिलीफ को निकाल सकेंगे और नया बन जाएंगे। तो चलिए इस नए दिशा में, नई मंजिल में पहुंचने के लिए नया कदम उठाते। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और सभी को गुड लक है, बेस्ट, बहुत अच्छा लक है। आप सब डायमंड्स हो, स्पार्कलिंग डायमंड्स। अब आप सबका पॉलिशिंग यहाँ पर हुआ है और अभी आप ये लक्ष्य रखना कि इस पॉलिश, इस शाइन को आप मेंटेन करेंगे और चमकेंगे, विश्व में रोशनी फैलाएंगे, विश्व में रोशनी फैलाएंगे, सब रोशनी फैलाएंगे। एवरीबडी आर स्पार्कलिंग स्टार्स, वेरी नाइस। सो ब्यूटिफुल डायमंड, स्पार्कलिंग डायमंड्स जहां भी जाएंगे, जैसे डायमंड रखते हैं तो रोशनी रोशनी हो जाता है। तो आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति इस विश्व में, आपके परिवार में चेंजेस लाएगा। आप बदल गए तो आपका जग बदल जाएगा, ये पूरा विश्व बदल जाएगा। तो चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन में हम वो नया विश्व देखेंगे और अपने आप को भी नया देखेंगे। और साथ में इस यात्रा में हमारा जो गाइड है, क्योंकि ये नई यात्रा है, डिफरेंट यात्रा है, तो हमें अच्छा गाइड चाहिए। तो पता है आपका गाइड कौन है? आपका गाइड कौन है? स्वयं परमात्मा, जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप शिव है, जिनकी पहचान आपको मिली है। तो वो गाइड हमारे रास्ते को बहुत सुंदर बनाएंगे, रोशनदार बनाएंगे। तो चलिए उनको धन्यवाद करते हुए सब थोड़ा सा सीधा बैठेंगे। अपने श्वासों पर थोड़ा ध्यान देंगे। कैसे आप श्वास लेते हो और कैसे श्वास छोड़ते हो उसको अनुभव करिए। अब धीरे धीरे डीप ब्रेथ्स ले लीजिए, गहरा श्वास ले लीजिए, आराम से श्वास लीजिए और बहुत आराम से श्वास छोड़िए। अब जैसे आप श्वास ले रहे हो तो महसूस करेंगे कि इस डायमंड हॉल में जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छे फीलिंग्स है, वो सब आप अंदर ले रहे हो अपने श्वासों से। आप इस ऊर्जा को, इस उमंग को भर रहे हो। और जैसे आप श्वास छोड़ते हो, अपने अंदर कोई भी डर है, कोई भी प्रकार की चिंता है, कोई भी प्रकार का तनाव है, उसको आप रिलीज करेंगे, स्वाहा करेंगे। फिर से जैसे श्वास ले रहे हैं तो फील करेंगे कि नई ऊर्जा, नया उमंग, बहुत सुंदर उमंग अपने अंदर भर रहे हैं। और जैसे श्वास छोड़ते हैं तो अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हैं, स्वाहा कर रहे हैं। अब बहुत आराम से, वेरी जेंटली अपना ध्यान अपने मस्तक के बीच में एकाग्र करेंगे और मस्तक के बीच में एक दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे। एक सफेद चमकता हुआ प्रकाश है, एक दिव्य रोशनी है। और ये दिव्य प्रकाश जगमगा रहा है, शाइन कर रहा है मस्तक में। और यहां से अपने प्रकाश की किरणें पूरे शरीर में फैला रहा है। अब फील करिए कि आपका पूरा शरीर प्रकाशमय हो रहा है, लाइट, वेरी लाइट, हल्का प्रकाश में हो रहा है। और धीरे धीरे ये प्रकाश वातावरण में फैल रहा है और आपके चारों तरफ प्रकाश में ऑरा बन रहा है, लाइट का ऑरा, जो बहुत ही हल्का, डिवाइन है, दिव्य है, शुद्ध है। और ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, फैलता जा रहा है और सारे वातावरण को, सारे डायमंड हॉल को प्रकाशमय चार्ज कर रहा है। अब अपने मन की आंखों के सामने वो सुंदर नूर खुदा परमात्मा गॉड जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। वो डिवाइन लाइट जो आपका प्यारा पिता है, आपका खुदा दोस्त है, आपके सामने हाजिर हो जाता है और अपनी अनंत किरणें प्रकाश की, प्रेम की आपके ऊपर फैला रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको साथ दे रहा है और आपको वायदा कर रहा है कि बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अपने प्यारे पिता के सामने ये संकल्प रखते हो कि प्यारे बाबा आज से अब से मैं एक नई यात्रा अपने आप को स्वर्णिम बनाने की, गोल्डन बनाने की, इस विश्व को गोल्डन बनाने की यात्रा आरंभ कर रही हूं। बाबा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे नई रोशनी दी, आपने इतनी हिम्मत दिया, इतनी शक्ति मेरे में भर दी जो इस नई यात्रा में मैं कदम रखने की हिम्मत रख रही हूं। तो महसूस करिए कि खुदा दोस्त प्यारे पिता परमात्मा अपने लाइट और माइट की किरणें आपके ऊपर एक शावर की तरह फैला रहे हैं, बरसा रहे हैं और आप ब्लेस्ड आप फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो कि आप बहुत आशीर्वाद दुआओं से आपकी झोली भर रही है, आपका जीवन बहुत ही ब्लेस्ड है। तो दिल से प्यारे बाबा को थैंक्स करेंगे, थैंक यू बाबा फॉर दिस वंडरफुल जर्नी। थैंक यू बाबा फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू बाबा फॉर योर गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए। और इसी भावनाओं में रहकर एक सुंदर सा गीत सुनेंगे और उस गीत के शब्दों को महसूस करेंगे।
झरनों से संगीत है धरता। अपना ना काम ना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, याचना ना काम ना, तुमसे कुछ ना मांगे हम, योग करें हम योग्य बने प्रभु काम तुम्हारा।